ओम शांति। तो आज का विषय है सेवा केंद्र को योग भवन कैसे बनाएं। महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले हम दो बार सुन चुके हैं सेवा केंद्र को तीर्थ स्थान कैसे बनाएं और सेवा केंद्र को प्रयोगशाला, योग की प्रयोगशाला। खाली प्रयोगशाला नहीं, योग की प्रयोगशाला। प्रयोगशाला कोई भी हो सकती है। तो आज हम देखेंगे सेवा केंद्र को योग भवन कैसे बनाएं। बहुत अहम विषय है, क्योंकि हर ब्राह्मण की एक ये मानसिकता रहती है कि हमारा योग सहज हो जाए। अगर हम यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं तो किस लिए? ज्ञान चर्चा तो थोड़ी देर ही करेंगे, लेकिन जीवन हमारा योगी हो। तो निरंतर हमारा योगी जीवन हो, कुछ एक उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो विषय है सेवा केंद्र को योगी भवन कैसे बनाएं। तो हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, जो हमको कोर्स में सिखाया जाता है, मुख्य चार सब्जेक्ट के चार आधार स्तंभ है जिन पर टिका हुआ है, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग, ब्रह्मचर्य। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक और ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत नजर रखने की जरूरत है। और ये जो सेवा केंद्र है, इसको योग भवन बनाने की जो देखा जाए जिम्मेवारी तो हर ब्राह्मण की होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो वहां की संचालिकाएं होती हैं, टीचर बहनें, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उनके ऊपर बहुत अहम जिम्मेवारी होती है। क्योंकि कोई भी ब्राह्मण जब सेवा केंद्र में आते हैं तो हर ब्राह्मण वहां कुछ ना कुछ अनुभूति करने के लिए आता है, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आता है वो, कि कुछ ना कुछ अनुभूति हो, जीवन में नवीनता आए, इस ब्राह्मण जीवन का स्वाद, उसका मजा, उसका अनुभव आए, कुछ तो प्रगति का अनुभव हो। तो बहुत सारी ऊंची अपेक्षाएं होती हैं ब्राह्मण की, हर बीक के भाई बहने की जो सेंटर में आते हैं। तो इसमें टीचर बहने जो होती हैं उनको बहुत खबरदारी रखने की जरूरत होती है। जैसे भवन के ऊपर हम देखें तो भवन की जो नींव है, जो बताया चार मुख्य स्तंभों पर टिकी हुई है, इसी तरह कुछ एक और बिंदु हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से टीचर बहनों को उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान मार्ग ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम सीख गए, अंत तक सीखते रहना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस नींव, जो ब्राह्मण जीवन की नींव है, योगी भवन की जो नींव है, योग भवन की, सबसे पहले चाहिए निश्चय। निश्चय भी अनेक प्रकार का निश्चय है। हमको कोर्स कराया गया, बाबा पर निश्चय हुआ, ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे निश्चय चाहिए। हर एक ब्राह्मण के ऊपर निश्चय चाहिए। मुख्य रूप से तो हम जानते हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक है बौद्धिक स्तर पर जानना, दूसरा है उसे मन से स्वीकार करके उसको वैसी पालना देना हर ब्राह्मण को। तो हर ब्राह्मण के ऊपर निश्चय चाहिए। फिर ज्ञान के ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, और स्वयं के ऊपर भी निश्चय चाहिए मुख्य रूप से। अगर स्वयं के ऊपर निश्चय नहीं है, डामाडोल करते रहेंगे कि पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा क्या होगा। जैसे कल परसों बाबा ने मुरली में बताया था ना, कि अगर छोड़कर जाने का संकल्प भी आता है भी पाप है ये। उस समय पाप था भी, तो महापाप हो गया होगा, वृद्धि हो गई है। तो वास्तव में निश्चय सचमुच कितना हमारा मजबूत है उसके? क्योंकि जैसा सेवा केंद्र की बहनों का निश्चय होगा, वैसे जिज्ञासुओं पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बहनों के ऊपर बहुत सारी उनकी अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, कि हमको यहां से कुछ तो कुछ प्राप्ति होगी, कुछ तो कुछ हमारे जीवन में बदलाव आएगा, नवीनता आएगी, हमारा जीवन खुशियों से भरपूर होगा। क्योंकि संसार में चहूं और इतनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, इतना वैज्ञानिक युग है, इतनी व्यस्तता है, कि घर से निकलकर वो कुछ ना कुछ अनुभूति चाहते हैं। और जिस स्थान पर हम अनुभव करने के लिए जा रहे हैं, उस स्थान पर ही अभी कई प्रकार के विघ्न हैं, वहां का निश्चय डावाडोल हो रहा है, तो आने वाले जिज्ञासु को कैसे हम उसका अनुभव करा पाएंगे। तो जो निश्चय का फाउंडेशन है, हमको काफी मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद है फिर पवित्रता, हमारी प्योरिटी किस स्तर पर बढ़ रही है। मोटे रूप से बताया ब्रह्मचर्य, वो तो ठीक है, लेकिन सूक्ष्म रूप से पवित्रता, अर्थात जितने भी भाई बहने आ रहे हैं सबके प्रति समभाव दृष्टिकोण, वो कहां तक रहता है। और इसका कारण हमने देखा है, अगर समभाव दृष्टिकोण नहीं है तो सेंटर में उसका एक मुख्य कारण होता है, जो भी वहां सहयोग लिया जाता है वो कभी मांग के नहीं लेना चाहिए। अगर हम मांग के लेते हैं, इशारा तो देना पड़ता है, लेकिन बाबा ने कहा जिसको सफल करना वो अपने आप करेगा आगे, ऐसा क्लास करा दो, ऐसे बाबा के महावाक्यों का उनको अभ्यास, उनका अनुभव करा दो, ताकि वो अपना सफल करने के लिए तैयार हो जाए, एकदम बलिदान, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए। तो वो मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मांगते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको सहयोग के लिए कहता हूं और आप सभी अपना अलग अलग दे रहे हैं नाम लिख के, वास्तव में ये भी एक गलत परिपाटी है जो अपना नाम लिख के हम देते हैं। जो सहयोग की प्रथा है वो केवल भंडारी तक ही सीमित रहना चाहिए, जिसको जितना देना वो भंडारी में ही डाले सीधा, नहीं तो अगर किसी ने ज्यादा दिया किसी ने कम दिया और हमारी अवस्था भी ऊपर है ही नहीं उतनी, तो हमारा सबके प्रति दृष्टिकोण अलग अलग हो जाएगा, और फिर मैं ट्रीटमेंट भी वैसा ही करूंगा, जिसने थोड़ा ज्यादा दिया उसके साथ ज्यादा बैठूंगा, उसके ज्यादा पूछताछ करूंगा। तो ये संभाव दृष्टिकोण कहीं ना कहीं हम ही बाधा बन रहे हैं किसी के लिए, उस योग के लिए, क्योंकि जो सेंटर में फिर देखते हैं इसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो जो जिज्ञासु है बेचारा कुछ थोड़ा ही बहुत कर पाता है, वो ज्यादा नहीं कर पाता है, लेकिन हो सकता है उसकी प्योरिटी का लेवल इतना हाई लेवल हो, उसके प्योरिटी के आधार पर ही सेंटर का वातावरण टिका हुआ हो, और जो पैसा देने वाला व्यक्ति है उसके आधार पर नहीं टिका हुआ है, क्योंकि उसने कैसे कमाया, लेकिन जिसने 1 रुपया भी डाला अपने खून पसीने की कमाई करके, और उसकी प्योरिटी का लेवल, उसके महान विचार हैं, उसकी वृत्ति बहुत शुद्ध है, उसके आधार पर वो वातावरण हो सकता है उसी के आधार पर टिका हुआ, और हम सोच रहे हैं कि इसने ज्यादा दिया इस पर सारा खर्चा चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो सूक्ष्म चीज है। तो उस एटमोस्फेयर को परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता में बहुत बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि तो सारा स्थूल रूप से नहीं है, सारा सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म रूप से हम सबको कितनी पालना दे पा रहे हैं, तभी तो हम उनको बाबा की प्यार का अनुभव करा पाएंगे। जैसे घर में भी अगर कोई बच्चा कमजोर होता है तो जो माँ बाप होते हैं तो उसको स्टैंड करने के लिए उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते जो बहुत कमा रहा है, जो बच्चा कमजोर है उसको खड़ा करने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसमें एक नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं, उसके लिए सब इकट्ठा होकर काम करते हैं। कई समाजों में हमने देखा जो कोई भी समाज होता तो अपने समाज के व्यक्ति को वो उठाने के लिए पूरा समाज एकत्रित हो जाता है। तो उसी तरह से इस ब्राह्मण समाज में भी हमको, अगर हमारा बेहद का दृष्टिकोण नहीं है, एक संकुचित विचारधारा है, संकुचित दृष्टिकोण है, तो भी वहां के जो योग की जो शुद्ध वाइब्रेशन है, योग की जो शक्तिशाली वाइब्रेशन है, वो क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो एक मांगने की परिपाटी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जो करेगा सो पाएगा सीधा सिद्धांत है, मांग मांग कर कहां लेंगे हम। फिर मांगने की और भी बात है, आजकल ये भी बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि अभी समय अनुसार सारा ज्ञान स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति एक सेंटर में जा रहा है और दूसरे सेंटर में कुछ करता है तो उसको रोक दिया जाता है वहां से, तुम वहां नहीं कर वहां कर, अरे भी तो विश्व कल्याणकार की भावना कहां हुई, अपन उसको बताना नहीं, हाँ उसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन पता तो चल जाता, फिर भी कहीं ना कहीं वो टीचर बहनी बोल दे कि भाई वहां भी आता है तो क्या करेंगे उस समय। तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं तो क्या वही सेंटर तक सीमित रहेंगे। कोई व्यक्ति बाहर जाता है, अब किसी का टूर का प्रोग्राम है, कुछ करता है, कहीं भोजन करने की ज्यादा, टीचर बहन को सहयोग करेगा, बिना उसके कैसे करेगा वो जाके, तो कहीं ना कहीं उनको रोक देते हैं, या तो यहां करे या सेंटर में, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए इसको। तो विश्व कल्याणकार की भावना कहां गई, मर गई वो क्या। तो जो हमको पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो सेंटर में टीचर बहने पाठ पढ़ाने वाली हैं, और वो उनकी अगर मेंटेलिटी इस तरह की रहती है तो वो योग भवन क्या हुआ, वो साधना भवन नहीं है बल्कि साधन भवन बन गया वो। और तीसरी बात, एक साधना या योग का जो श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए उस भवन को साधना भवन बनाना पड़ेगा, अर्थात साधन भवन नहीं, साधनों से मुक्त रखना पड़ेगा। अधिकतर अभी कंपटीशन ही देखा जा रहा है कि कंपटीशन चल रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां के सोफे कैसे हैं, कि पर्दे कैसे हैं, कि घड़ी कैसी है, कि चित्र कैसे हैं, कि गलीचा कैसा है, यहां की रसोई कैसी है, कि बर्तन कैसे हैं, उस बाबा का कमरा कैसा है। तो एक बाहरी चकाचौंध में मनुष्य का जो उनका आकर्षण है, जो संचालिकाओं का या कोई भी भाई बहन का कह लो, सीधी सी बात, वो आकर्षण योग के आकर्षण को समाप्त करता जा रहा है। साधनों में आकर्षण है, अगर हम इस कॉन्फ्रेंस हाउस में बैठे हैं और यहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगा दी जाएं तो हमारा ध्यान उधर ही जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति अभी उतनी परिपक्व नहीं है। तो जो सेंटर में जितने भी भाई बहने आने वाले हैं उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए, उनको साधना का एक रोचक तरीके से उनके अंदर एक बीज डालने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, उस एटमोस्फेयर को भी हमको साधना जैसा बनाना पड़ेगा। खुद ही हमको उन चीजों से थोड़ा दूर होना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए बेहद का वैराग्य। जब तक वैराग्य की भूमि पर वो बीज नहीं है, ज्ञान योग के बीज नहीं है, तब तक हम दूसरों को कैसे अनुभव कराएंगे। तो खुद ही हम कहीं ना कहीं बाधक बने हुए हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अर्थात योग के अच्छे अनुभव कराने के लिए पहले तो हमें स्वयं उसमें डूबना पड़ेगा, तो हम दूसरों को योग के अच्छे अनुभव करा सकते हैं। मुरली सुनाना तो आसान है कि इसमें यह है, इसमें परिस्थितियां आएगी, ये करना है, योग के ऐसे ऐसे अनुभव करना है, ड्रिल ऐसे करनी है, संबंधों का अनुभव ऐसे करना है, लेकिन क्या उसमें हम डूब रहे हैं? अच्छा चलो संपूर्ण नहीं भी डूब रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो डूब रहे हैं कम से कम। प्राय देखा जाता है उसी के शब्द हमारे दिल को चीर देते हैं जो खुद ही अनुभव करता है। अदरवाइज कोई कितना भी हम कर लें, कितना भी किसी का सुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बांके बाहें पल्ला झाड़ के चले जाते हैं और वो याद भी नहीं रहता। और जिसने अंदर तक खुद अनुभव कर किया हुआ है उसके शब्द मन को भेजते हैं, उसके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है, खून खोलता है उसका कुछ करने के लिए, उसको अपने जीवन की वैल्यू पता है। क्योंकि संसार को छोड़ा है, जिस संसार से हमको दुख मिला है उस संसार को छोड़ के हम अपने जीवन को योगी जीवन बनाने के लिए आए हैं सेंटर के ऊपर, और उसको छोड़कर हम फिर वहां के माहौल को अच्छा नहीं बना रहे हैं, बल्कि आने वाले जो भाई बहन हैं उनको और ही व्यर्थ के लिए हम एक भले मुख से नहीं कर रहे हैं लेकिन उस एटमोस्फेयर से प्रेरित कर रहे हैं। तो इस साधना वाला जीवन है, बताया था ना कल तीर्थ स्थान है, कि अब वास्तव में हमारे सेंटर तीर्थ स्थान के जैसे प्रतीत होते हैं। इतने इतने बड़े जो हम बिल्डिंगें खड़ी करते जा रहे हैं, और कई जगह ऐसे भी है बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं लेकिन भाइयों बहनों वो सुने नहीं है, वो बिल्डिंगें किस काम की है फिर? क्या केवल शोकेस? और आने वाले भाई बहने सबसे पहले तो उनको बाहरी चकाचौंधी दिखाई देती है, आंतरिक अनुभूति कहां होती है? तो क्या हमारा जीवन इसी के लिए रह गया? अभी मजदूर की तरह बिल्डिंगें खड़ी करते रहे? हमारी योग रूपी इमारत कहां तक मजबूत हो रही है? बाहरी मान शान के चक्कर में हम कितना इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, वो तो संसार भी हो रहा है, फिर हमारे और उनमें क्या फर्क रहेगा? फिर इस जीवन का फायदा क्या हुआ है? निरर्थक हो गया जैसे। तो इस जीवन की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, हमें स्वयं के ऊपर कुछ एक चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। उस सेवा के अंदर रहने वालों को थोड़ा अंतर्मुख होना पड़ेगा, अंतर्मुखता की गुफा में पहले स्वयं की कमी कमजोरियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर हम स्वयं की कमी कमजोरियों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो दूसरे की कमी कमजोरियां हमारे ऊपर बार करती जाएंगी और वातावरण भी वैसा बनेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे अंदर यह है, स्वीकृत करना पड़ेगा स्वयं को ही कि मेरे अंदर बुराइयां हैं, मेरे अंदर विकार हैं अभी भी। जैसे बाबा पांच विकार कहते हैं, कई तो ऐसे भी मोह की रगे ऐसे हैं, इतने इतने साल हो गए ज्ञान में चलने के बाद फिर भी वो मोह की रगे घर की तरफ क्यों खींच रही हैं? दूसरे बहनों को कहा जा रहा है कि तुमको घर में नहीं जाना और खुद साल में दो दो चक्कर मार रहे हैं, ऐसा कहां से आ गई? खुद तो कितने साल चलते हो गए और दूसरी बहनों को कहा जा रहा है ऐसे? खुद का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जा रहा है लेकिन दूसरी बहनों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों? कहां का पाठ पढ़ा जा रहा है? तो विश्व कल्याणकारी भावना है कहां? टाइटल तो हमने ले लिए, जैसे बताया श्याम भाई ने अभी के रोज का सोमान 10 दिन तक उसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक ही गोली 10 दिन तक काम नहीं करके 10-10 गोलियां खिलानी पड़ती है तो पेशेंट को देखकर। तो अर्थात जो सामने वाले अगर कमजोर भाई बहने आ रहे हैं तो उनको अलग अलग तरीके से सुमान अर्थात अलग अलग तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको स्नेह से भरपूर किया जाए, उनकी सुनी जाए थोड़ा, भले एक क्षमता सबकी अलग अलग है, फिर वो अलग अलग है कि ड्रामा में पार्टीज का ऐसा था लेकिन हम पहले से मेंटेलिटी ऐसी बना के रखी उसकी कि ड्रामा में ऐसा था, लेकिन ड्रामा को बनाने वाला कौन है? ड्रामा को तो अभी हम बना रहे हैं ना, पिछला रिपीट नहीं हो रहा है, वो तो हमको बाद में रखना है कि ड्रामा में था, लेकिन ड्रामा अभी हम क्रिएट कर रहे हैं नया। अगर हम पहले उसको समझ के बैठ जाए कि सब ड्रामा में होगा तो कोई पुरुषार्थ होने वाला नहीं है, और ये जो पुरुषार्थ हो भी रहा किसी का तो वो भी ड्रामा अनुसार ही हो रहा है। तो ड्रामा को क्या हम पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, या ड्रामा की यार्ड में किसी को हम कह रहे हैं इसका हिसाब किताब है ये तो भोगेगा ही, ड्रामा को उल्टी तरीके से यूज तो नहीं कर पा रहे हमें, तो अपने जीवन का हम कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ही उस भवन को कमजोर करने के कई ऐसे व्यर्थ विचार हैं जो वो भवन योग भवन की बजाय भोग भवन हो गया है, साधना की बजाय साधनों का भवन हो गया है, साधनों का भोग भोगने का भवन। हम कह रहे हैं दूसरे को टीवी नहीं देखना है, लेकिन खुद सीरियल देख रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक कन्या आई थी, उसने बताया था, यहां भी सज्जन भाई ने बताया था कि एक कन्या वो सेंटर में रहना उसने शुरू किया। पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन सेंटर में देखा जा रहा है वो टीवी सीरियल देख रहे हैं टीचर बहने। अब उसको 11 बजे तक बैठना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका सोने का स्थान भी वही है जहां टीवी लगा हुआ है। अब वैसे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? बाबा ने तो पहले कहा हुआ है कि आने वाली आत्माएं कमजोर होगी, और वो कमजोर मानसिकता लेकर आ रही है, क्योंकि हमको देखना तो नहीं है, ये टीवी देख रहे हैं कुछ भी देखें, लेकिन वो कमजोर आत्माएं अगर आ रही हैं और हम उसकी स्थिति को और ही कमजोर करने के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रखा हुआ है, तो फिर हम खुद ही कमजोर हो गए ना। इतने सालों से शक्ति कहां भरी, फिर वो कहां गया वो ज्ञान योग, जो इतने सालों से हमने उसका उपयोग नहीं किया। उसको सुनाया तो बहुत है, लेकिन स्वयं को कहां तक सुनाया हमने? तो कुछ एक चीजों का हमको स्वयं के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे योग की भवन रूपी इमारत क्या हम मजबूत कर रहे हैं, क्या हमारे में वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। और जो भी भाई बहने आते हैं उनको योग के भिन्न भिन्न तरीके से सहज अनुभूतियों का एक मार्ग बताना चाहिए। मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर एक की क्षमता अपनी अपनी है। सुनाते तो हैं, लेकिन उसका वहां का जो माहौल है, उन भाई बहनों में प्रेम इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि उनकी लौकिकता बिल्कुल समाप्त हो जाए, एक जीवन में अलौकिक ऊर्जा का संचार हो। और वो तब होगा जब सेवा केंद्र की टीचर बहन ऐसे होगी, नहीं तो जितने मर्जी बड़े खड़े भवन तैयार कर लो, कभी भी विघ्न वहां के जा ही नहीं रहे। अभी कितनी कन्याएं आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, क्यों जा रही हैं भाई? अगर हमारे भवन की ईंट की किले की ईंट जा रही, तो किला तो कमजोर हुआ ना। बाबा ने कहा तुम दोषी हो, अगर एक भी कोई ब्राह्मण जाता है उसके जिम्मेवार कौन है? हमने ठीक से उसकी पालना नहीं की है, उस ईंट को चकनाचूर करके उसके टुकड़े टुकड़े करके मन के अंदर ऐसा उसके तूफान मचा दिए कि वो वहां से चली गई। क्यों? उसको भी तो ज्ञान अच्छा लग रहा था ना, उसने भी तो इतने साल सेवा की, फिर क्यों उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? और वही विघ्न आगे फिर बाहर जाके समाज में प्रदर्शित हो रहा है। आज यज्ञ के लिए विघ्न जो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि ज्ञान योग के टाइम को हम कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में लगा रहे हैं, वो जो हमारे पुराने संस्कार अभी भी काम कर रहे हैं। और एक दो को सुना के जैसे मन को एक बड़ी शांति मिलती है कि मैंने सुना दिया, लेकिन कितना बड़ा पाप कर दिया वो। जिस वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया है, और उस भगवान के चुने हुए स्थानों को हम उस वातावरण को इतना कमजोर कर रहे हैं, वहां परचिंतन की जड़ें एकदम मजबूत कर रहे हैं, आने वालों को भी एक दो की कमी कमजोरियां सुना रहे हैं, तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी? उसकी नींव मजबूत रह पाएगी? उसकी दीवारें तो हिलेंगी, ढुलेंगी, गिरेंगी, भूकंप आएगा वो गिरेंगे। अर्थात भाई बहन आएंगे, भाई बहन आपस में मिलेंगे जुलेंगे, और वही चिंतन चलेगा जो पहले से वो बातें चल रही हैं। वो हाँ, जितने आएंगे उतने जाएंगे, ये भी बाबा ने कहा हुआ है, लेकिन इसका उल्टा अर्थ ले रहे हैं, क्योंकि हमको भगवान ने बता दिया हुआ है, तो कहां हमको समय पर यूज करना वो भी हमको पता होना चाहिए। क्यों जा रहे हैं फिर, उसका कारण क्या है? जितने आ रहे हैं जा रहे हैं, बोला बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही, आना तो इधर ही है, पार्ट सबका अपना अपना अलग बात है, लेकिन हमको किस तरीके से उनको ज्ञानियों की परवरिश देनी है, वो हमको तो बाबा ने टिप्स दिए हुए ना। जो भी बाबा के पास आते थे तो बाबा ने कैसे किस तरीके से उनको पालना दी, किसी को नजरअंदाज नहीं किया, उनको ऐसी पालना दी कि भले जाने वाले चले भी गए, लेकिन फिर भी आज वो याद करते हैं, आज वो बाबा के गुणगान करते हैं। और अगर हम टीचर से कोई सेंटर से कोई जाता है तो क्या वो टीचर का गुणगान करता है? कोई नहीं करता टीचर का गुणगान। क्यों? क्योंकि बाबा जैसे संस्कार ही नहीं भरे हैं, गए तो बाबा के होते भी घर में वापस। हाँ, यहां जो जितने भी अपने मजदूर भाई बहन सेवा करते हैं कहीं भी चले जाएं, लेकिन यहां का एटमोस्फेयर कहां मिलेगा, यहां के जैसा एटमोस्फेयर कहां मिलेगा? तो सेंटर का एटमोस्फेयर भी एक आत्मा को जैसे पापों से मुक्त करने के लिए हो, और वहां आके ही हम उस चीज को दूसरे को उस पाप में इन्वॉल्व करने का काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पाप है। तो ड्रामा के ज्ञान को हम उल्टे तरीके से यूज कर रहे हैं, स्वयं ही अपने जीवन पर अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं, स्वयं ही अपना गला तो नहीं घोट रहे हैं। उस समय तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में उसके जो परिणाम है बड़े दुख दे वो तो, और वो संतुष्टता नहीं है। आज भी हम देखते हैं इतने इतने सालों से चल रहा है, चेहरे पर संतुष्टता है ही नहीं है। अगर कभी कहीं कोई भाई जाता भी है सेंटर में तो घुमा फिर आगे उसको वहां रहने के लिए तो छोड़ो, वहां भोजन करने के लिए भी नहीं भी किया जाता है। और कोई ऐसे भी देखे सेंटर, वहां बिना सहयोग के खुले दरवाजे रहते हैं, उनको भोजन कराते हैं और वो सेंटर निर्विघ्न रूप से चल रहे हैं। भले वहां दस ही लोग, दस ही भाई बहने हैं, लेकिन निर्विघ्न है, उनके चेहरे पर वो रूहानियत झलकती है। बाबा ने कहा विघ्नों वाले सेंटर नहीं चाहिए मुझे, निर्विघ्न सेंटर चाहिए। तो इतने सालों से अगर हम चल रहे हैं ज्ञान योग में और अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने की बजाय और ही विघ्नों से भरपूर करते जा रहे हैं, ना केवल अपने जीवन को और आने वाले को भी विघ्नों से भरपूर करते, वो भवन योगी भवन कहां का हुआ। तो कुछ ना कुछ एक धारणाओं की हमें स्वयं के ऊपर ही एक गहरी नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये जो भवन है, योगी भवन जो सेंटर है, इसको कैसे योग की एक प्रयोगशाला अनुभव कराया जाए, एक नवीनता आए उसमें, नवीन ऊर्जा का संचार हो, आने वाले जिज्ञासु को सीखने के लिए प्रेरित करें, उनको आपस में स्नेह मिलन के स्नेह के सूत्र में बांधा जाए, उनको कुछ ऐसा होमवर्क दिया जाए ताकि वो होमवर्क करने के लिए प्रेरित हो जाए, वो उससे उनका कल्याण हो, उसमें उन कुछ करने का विचार पैदा हो, पुरुषार्थ के प्रति कुछ सजगता हो, नजरें खुले, उनके आंख खुले कि हमको ये करना ही है। तो अगर फाउंडेशन ही सामने वाला ऐसा है, टीचर ही ऐसा है, तो फिर कैसे भवन योग का भवन होगा। तो सेवा केंद्र को योग का भवन बनाने के लिए बहुत सारी बातों को अटेंशन रखने की जरूरत है, ताकि उस भवन में आने वाला कोई भी आत्मा आने वाली है वो एक विशेष अनुभूति करे। कई जगह अनुभूति, कई बार हमने ऐसे भी देखा है, एक सेंटर था शायद साउथ की तरफ, तो वो टीचर बहन जो एक पुरानी भी थी, तो एक भाई वहां जाता था बहुत सालों से, लेकिन अनुभूति कुछ नहीं हो पाती थी उसको। लेकिन वहां एक छोटी कन्या थी, तो छोटी कन्या ने कहीं दूसरी जगह सेंटर खोला, तो वहां जाके वो एक दिन वहां गया, तो उसके पास में जाने से उसको इतनी अच्छी अनुभूति हो गई कि अपनेपन की फीलिंग आई, माने जैसे उसके प्रति एक पुरुषार्थ के लिए एक लहर पैदा होगी कि हमको ये पुरुषार्थ करना ही है। उसके बोल से उसके जीवन प्रभावित हो गया, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल में उसमें देखा अपनेपन की भावना। लेकिन इतने सालों से जो व्यक्ति चल रहा है अपनेपन की भावना नहीं है, तो फिर उसमें पुरुषार्थ करने की कैसे रुचि पैदा होगी। तो नए नए तरीके से नवीनता क्रिएट करने के लिए दूसरों के जीवन से पहले हमें स्वयं के जीवन में नवीनता क्रिएट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमारा जो निरंतर योगी जीवन बन जाए, जिस स्थान पर हम रह जाएं, हमारा एक ये जीवन एक योग भवन बन जाए, चलता फिरता लाइब्रेरी जिसको बाबा कहते हैं। तो खुद ही नजर रखने करने की जरूरत है, हमें उन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें जो हमारे जीवन में जो बाधित बन रही है, किन चीजों का हमने अभी तक त्याग नहीं किया जो हमको त्याग देनी चाहिए। पता तो क्या किसको पता नहीं त्याग, क्या क्या त्याग करना है सबको पता है, लेकिन फिर भी त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता मैं दूसरों को देख रहा हूं कि ये सब ऐसे तो कर रहे हैं, इनसे तो मैं तो अच्छा हूं, ये तो ज्यादा टीवी देखते, मैं तो थोड़ा टीवी देखता हूं, ये तो ज्यादा मिर्च मसाला खाते, मैं तो कभी कभी खाता हूं, ये तो ज्यादा परचिंतन में डूबे, मैं तो कभी कभी करता हूं। तो कर तो रहे हैं ना, लेकिन तो कौन कौन सी चीजों का त्याग है, कौन सी चीजों को हमने व्यर्थ में जो पकड़ के रखा हुआ है, जिस व्यर्थ ने हमारे मन बुद्धि को बांध के रखा हुआ है, क्यों नहीं मन बुद्धि के पंख, मन बुद्धि हमारा ऊपर उड़ पा रहा है, क्यों नहीं हमें ज्ञानियों के पंख हमारे मजबूत हो पा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और बाबा ने कहा अंत में परिस्थिति तो विकराल रूप से आएंगी, और परिस्थिति तो आ रही है दिन से दिन प्रतिदिन, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमारा योगी जीवन एकदम अचल अडोल रहे, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, किस धारण मनुष्य के नहीं है, उन महावाक्यों को हमने अपने जीवन में कहां तक आत्मसात किया है। तो योग के लिए ज्ञान की भी बहुत जरूरत है, जितना हम ज्ञान में बिजी रहेंगे, नए नए तरीके से उस ज्ञान को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन निरंतर योगी बन जाएगा। योग केवल ये नहीं है कि हम केवल बैठ के योग करते रहें, ये तो हमारी चलता फिरता, जैसे हमारा निरंतर बाबा के श्वास के बिना जीवन नहीं है, ऐसे योग के बिना भी जीवन ब्राह्मण जीवन नहीं है, ये तो हमारा श्वास है योगी योग। दूसरा बताया साधन तो एक वहां सादगी होना, तो सबसे मुख्य बात जो है सादगी होना भी बहुत जरूरी है सेंटर में। जितना सादगी होगी, जितना वहां के सुख सुविधाओं का अभाव होगा, उतना ही तपस्या की अग्नि प्रज्वलित होगी। अगर साधनों का वहां भंडार है तो साधना उतनी कम है। आश्रम माना क्या? त्याग, तपस्या, वैराग्य। लेकिन उसे डर रहे हैं हम। क्यों डर रहे हैं? जबकि हमने पता है हम पिछली लाइफ में इतने सुख सुविधाओं से गुजरने के बाद भी हमने दुखी प्राप्त किया है। अल्पकाल का सुख का परिणाम क्या है? दुखी तो है ना। लेकिन वो दुखी प्राप्ति के बावजूद भी हम फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें क्या कहा जाएगा? जो बाबा कहते हैं, वो देखना तो वो भी यहीं देखो और वो देखना तो वो भी यहीं देखो, इस ब्राह्मण संसार में। तो हमारे जीवन में कहां कहां त्याग समाया हुआ है, क्योंकि उन भाई बहनों की जो प्यास है, जो पिपासा है, उनको शांत करने के लिए हम तभी स्वयं को लायक बनाएं, तभी उनकी प्यास को हम शांत कर सकते हैं। आने वाले समय बाबा ने कहा, जो कमजोर आत्माएं उनको भी उनका बेड़ा पार कराने के लिए तुमको इतना पहले से शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो वहां सादगी जितना हो, अंतर्मुखता जितनी हो, ज्ञान की चर्चा हो, योग के भिन्न प्रयोग बिठा के जितने भाई बहन आते हैं उनकी पालना इतनी तरीके से हो। देखिए, सेंटर में अगर कोई आता है तो जरूरी नहीं उसकी पालना खाने पीने से होती है। ये तो बहुत नीचे की चीज है। ये हमारे बोल से उसकी पालना होती है। हमको याद है कहीं हम एक जगह गए थे तो खिलाया पिलाया तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में 10 बातें और भी सुना दी गई, तो उसका क्या अर्थ है? और एक जगह ऐसे है, उन बहनों के बोल ऐसे होते हैं कि वहां व्यक्ति सहयोग करने के लिए अपने आप ही कुछ कर देता है वो। तो हमारा जो भोजन है वो केवल स्थूल भोजन ही है, हमारे संकल्पों का भोजन, हमारे संकल्प बोल के माध्यम से किसको भोजन खिला रहे हैं वो। उतना भोजन खा पी के हमारी तबीयत नहीं ठीक हो जाएगी जितना किसी के विचारों से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें पालना में किस तरीके की कमी रह रही है वो हमको देखना पड़ेगा। फिर हमारा जो बाहर रहने वाली टीचर बहने हैं, आपस में एक मत होना जरूरी है। अभी कमी कमजोरियां तो सब में होती हैं, किस में नहीं है? बाबा ने कहा अंत तक तुम्हारे में रहेगा ही। लेकिन दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए हमारी मानसिकता तो बड़ी मजबूत हो चुकी है। स्वयं के ऊपर नहीं, दूसरे की तरफ उंगली है लेकिन 4 मेरी तरफ है, ये हम भूल रहे हैं। तो दूसरे की कमजोरियों को संभालने के लिए वो शक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर कमी कमजोरियां हैं भी हैं लेकिन उसको पार कौन करेगा? उसके निमित्त तो हमको भगवान ने बनाया हुआ ना, और उन कमी कमजोरियों का हम बखान कर रहे हैं, एक दो को बता रहे हैं, जबकि बाबा ने हमको समेटने की शक्ति दी है। तो कहां प्रयोग किया वो? क्या केवल वो डायरी तक किसी में रहेगी? क्या वो मुरली की अव्यक्तवाणी तक किसी में रहेगी? कहां तक उसको समारे हैं? हमको पता कईयों में कई कमियां दिखाई दे रही हैं, क्या मैं अपने जीवन को उन कमियों का विस्तार करने में अपना ऐसे व्यर्थ गवाता रहूं? तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन हुआ फिर? इसलिए बाबा ने कहा गुणग्राहकता, कौन सा चश्मा पहन के रखे? दूसरों को गुणों को देखने का चश्मा पहन के रखो। अब किसमें अवगुण नहीं है? अवगुण तो सब में है, और सबसे ज्यादा अवगुण उसी में है जो दूसरे के अवगुण देख रहा है। डबल के ट्रिपल के कई गुणा बढ़ गया। अगर आप सभी मेरे में अवगुण देखते हैं तो आपके अंदर एक ही अवगुण गया है। मैं सबके अवगुण देखूंगा तो सबके अवगुण मेरे में आ गए, तो कितने सारे हो गए? अनलिमिटेड हो गए। और दोष दृष्टि जाती है, फिर हमारी बात ही शुरुआत अवगुण से होती है। किसी के बारे में बात करते हैं, अच्छा वो ऐसा है, लेकिन उसके पहले हमको अवगुण ही दिखाई देंगे, तो हमने गुणों का चश्मा कहां पहन के रखा फिर वो? अर्थात हमने आत्मिक वृत्ति से स्वयं का परिवर्तन नहीं किया। जो बाबा ने कहा आत्मा के तो मूल संस्कार हैं ही, अभी प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति के, ये तो बीच में थोड़ा साइड सीन आ जाता है, बाई प्लाट्स, उन पर रुकना थोड़ा नहीं है। उन पर रुक जाएंगे तो दुर्गंध तो हमें तड़फाएगी ना, बदबू तो आएगी। साइड सीन में जा रहे हैं, क्या हम कूड़े के ढेर के पास खड़ा हो जाएंगे? कूड़े का ढेर तो दिखेगा, लेकिन क्या हम वहां उसकी दुर्गंध लेने के लिए खड़ा हो जाएंगे? ये बहुत अच्छी दुर्गंध आ रही है, क्या मजा आ रहा है, जिंदगी में पहली बार देखी हमने। तो अवगुण भी तो ऐसे ही है ना, लेकिन अवगुणों के उस कूड़े के ढेर पर हम कैसे खड़े हो जाते हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, इतने सालों से जुड़ा हुआ ज्ञान में फिर भी ऐसे चल रहा है, तो क्या ये दुर्गुण नहीं है? दुर्गुण रूपी वो दुर्गंध हम अपने अंदर में नहीं आत्मसात कर रहे? तो जहां हमने विष को भर के रख दिया वो अमृत ठहरेगा कैसे? तो अगर हम मुरली भी हमने देखा कभी, हम स्वयं को कभी जांच करते हैं, अगर हमारी बुद्धि में अगर भगवान के महावाक्य नहीं ठहर पा रहे हैं तो हमने अभी विष जो है ना वो भर के रखा हुआ, अभी भी विष को एकत्रित करने की हमारी परिपाटी बनी हुई है, वो ही हमारी अभी आदत बनी है, वो संस्कार अभी भी पक्के हैं, क्रिएट नए संस्कार क्रिएट नहीं हो रहे हैं, वो आदतें हम उन आदतों को अभी भी हमने प्यार करके रखा हुआ है। क्यों नहीं हमारे में, जब पिता के वो संस्कार है तो मेरे संस्कार भी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तो हमने अपने पिता को नजरअंदाज करके किसी दूसरे को पिता बना के रखा हुआ है, पानी पिलाने के लिए किसको, स्वयं को। तो हाँ, तो बात चल रही थी गुण ग्राहकता, कि गुण ग्राहकता कितनी है, सभी का पार्ट अपना अपना है, सभी अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं, एक ही परिवार का है, ये परिवार जो हमारे हाथ की तरह है, हाथ की उंगलियों की तरह है, तो क्या मैं इन उंगलियों को काट दूंगा छोटी बड़ी है? तो परिवार भी हमारा हिस्सा है, कोई कैसा भी है। बाबा ने कहा परिवार में पास तो सब में पास, और पेपर तो परिवार से है, बाबा तो आगे सुना के चला जाता है सारे दिन, तो ये बाबा के बच्चे हैं जो हमारे, शुक्र समझिए हम इस बात का शुक्रगुजार हैं सभी का या भगवान का भी, कि जिनके साथ हमारा श्वास हिसाब किताब करने के लिए परिवार मिला वो भगवान के बच्चे मिले हुए हैं, उनके साथ ही हमारा हिसाब किताब है, दूसरों के साथ नहीं है, और वो भी सब ज्ञानी है, ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतने बलशाली हैं कि हमें उनके सामने खड़ा किया गया पहलवान बना के, इनसे अभी सामना करना है, तो हमको योग्य तो समझा कम से कम उसने कि ये मुकाबला कर सकते हैं इनका। तो सेंटर में जो भाई बहने आते हैं उसमें जो भी योग में आते हैं तो योग में किसी को उठाना नहीं चाहिए, वहां वो बेचारे घर से आधा घंटा टाइम निकाल के आ रहे, इतनी व्यस्त उनकी दिनचर्या है, इतना नौकरी धंधे में जा रहे हैं, और बेचारा 10 मिनट के लिए योग में आता है और अगर उसको उठा दिया जाए तो वो कितना खराब लगेगा। हाँ, अर्जेंट सेवा है वहां उठाया जा सकता है, अगर वो सेवा योग के बाद भी की जा सकती है तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए उसको, और ये हमने देखा है ऐसा होता है, अगर हमने देखा अगर वो की सेवा है, वो सेवा बाद में भी की जा सकती थी, कल भी की जा सकती थी, उसका महत्व नहीं था उसमें इतना, लेकिन हमारी आदत पड़ी है कि ये ज्ञान योग में ज्यादा नहीं आगे जाना चाहिए, बातें तो सारी सही है। इसका मतलब बाकी सारी खराब थी, अब ठीक लगी है आगे। तो ज्ञान योग से किसी को विमुख करना भी बहुत बड़ा पाप है। बाबा ने कहा तुम्हारा इस संसार में किसी के साथ बैर नहीं है, कल की मुरली में था, तुम विश्व कल्याणकारी हो। एक मुरली में कल ही शैलेंद्र भाई बता रहे थे कि एक महावाक्य है, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम किसी के दुश्मन नहीं हो, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम्हारे से दुश्मनी रखता है, तो उसके प्रति भी आप दुख का विचार नहीं कर सकते, उसको दुख देने का विचार नहीं कर सकते। इसलिए काले महाभाग के द्वारा से रिपीट हुए कि तुम्हारा इस संसार में किसी से बैर नहीं है, तुम हो विश्व कल्याणकारी। तो क्या सचमुच वो टाइटल, इतना बड़ा टाइटल है विश्व कल्याणकारी, वो हमारे सिर के ऊपर ताज के रूप में भगवान ने रख दिया, तो क्या उस टाइटल के अनुरूप हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, वो हाफ कास्ट ब्राह्मण अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कहेंगे हाफ कास्ट ब्राह्मण, स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन पद उतना हो जाएगा। चलो हम तो कहते हैं स्वर्ग छोड़ो, स्वर्ग की बात, वर्तमान समय का सुख कहाँ है? स्वर्ग का सुख तो इस सुख से तो छोटा ही है ना, वो किसने देखा, वो बाद की बात है, देखो नहीं देखो, लेकिन वास्तव में सारे सृष्टि चक्र में ये इस समय जो हम टॉप पर खड़े हैं, बाकी तो यहां से उतरती कला ही है, तो टॉप पर खड़े हो कि हम दुख ही दुख देख रहे हैं सारे संसार का, भगवान की तरह साक्षी अवस्था पर हम नहीं खड़े हैं, तो फिर इस ब्राह्मण जीवन का बना के हमने क्या किया? इसलिए हमको हर एक व्यक्ति से कुछ ना सीख सीखना है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे लेट आया ज्ञान में, चाहे पहले से है, पुराना है, हमारा जो दृष्टिकोण बनाना चाहिए। और हाँ, हमें अगर कोई कमी कमजोरियों को हमारे बताता है तो उन पर हमको ध्यान भी रखना चाहिए। अब ये जैसे मुख से निकली है, अब ये तो लोग सोचेंगे ये देख के बताया हुआ इसने, क्योंकि दिखाई तो दी है ना सबकी, बिना देखे थोड़ा बताया, देखी है तभी तो बुद्धि में है ना, लेकिन ये भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि अब अभी कमी कमजोरियां और मेरा संग उन्हीं में रहे, तो सत्संग अर्थात क्या, जो चारों पिलर उसमें सत्संग का है, तो संग भी तो हमारा श्रेष्ठ चाहिए ना, थोड़ा तो दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी ना, तब तक हमारी दूरी बनी रहनी चाहिए, तब तक जब तक हम स्वयं को इतना मजबूत ना कर पा लें कि जो कुसंग में जा रहे हैं वो स्वतः आकर्षित हो इस तरफ। हम दूसरों को देख के विचलित क्यों, बल्कि उनका मन विचलित होना चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए। हम क्यों किसी की भावनाओं में ऐसे बह जाए, जिसका हमने संग पकड़ा हुआ, जिसका पल्लू पकड़ा हुआ, जो उस पार सारी सिटी को पार लगाने वाला है, वो ही हमारा नैया पार करेगा, खबैया है, उसके पल्लू को छोड़कर हम संसारिक व्यक्तियों के पल्लू पकड़ रहे हैं, उनके संग में जा रहे हैं, उनकी मंडली में बैठ के प्रपंच कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? जबकि पता वो प्रपंच करने के बाद भी हमने जीवन में दुख ही दुख झेला है, और वो दुख झेलने के बाद भी फिर भी उधर ही जा रहे हैं। हमको किसको पता नहीं कि बुरा नहीं देखना चाहिए, लेकिन कहां छोड़ पा रहे हम, बुरा ही आप गुण देख रहे हैं, दिखाई तो देंगी लेकिन उसको आत्मसात नहीं करना। उनको, उन बुराइयों को देखने के बाद उनको कैसे छुड़ाएं, ये हमारा चिंतन चलना चाहिए, ना कि ये चिंतन चले कि वो जा रहे तो जाते रहे, मुझे नहीं उसमें जाना, बल्कि उनको छुड़ाने का भी तो चिंतन चलेगा ना, चलना चाहिए ना, क्योंकि यहां तो हमारे भाई बहन है, उनको कौन छुड़ाएगा। और वो तो स्वयं के ऊपर कड़ा पैरा रखने की जरूरत है, कड़ी नजर रखने की जरूरत है, ताकि हम इस पुरुषार्थी जीवन में जो योग भवन रूपी इमारत है उसको मजबूत कर सकें, उसके अंदर आने वाला हर ब्राह्मण उस किले से बाहर जा ही नहीं सके। बाबा ने कहा ना, बाहर जाते तो दोष किसका है, तुम्हारा ही दोष है, उसका दोष नहीं है, क्यों गया वहां से, वो उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसलिए दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, बाहर के रावण के हॉस्पिटल में चला गया, और लास्ट में दोष तुम्हारे ऊपर ही देगा वो, क्योंकि मैंने भी इसमें देखा, ऐसा देखा था। तो हमारा ट्रीटमेंट किस तरीके से हम दे पा रहे हैं, ये हमारा निर्भर करता है। फिर जो है, वहां जो भाई बहने आते हैं उनमें योग की रुचि पैदा करने के लिए कुछ नए तरीके से योग के, जैसे यहां भी वर्कशॉप करते हैं, या अलग अलग तरीके से किसी को टॉपिक दिया जाता है, कमेंट्री की जाती है, तो कुछ सिखाना चाहिए उनको, क्योंकि वो तो बेचारे नए आ रहे हैं। जैसे सूक्ष्म मतन में ड्रिल कैसे करनी है, क्योंकि योग के बारे में बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है अगर 10 मिनट भी बैठे हमारा 10 मिनट मन बुद्धि एकाग्र हो जाना चाहिए, लेकिन उसको एकाग्र करने का तरीका नहीं सिखा रहे हैं हम। ये हम बता रहे हैं कि एकाग्र होकर बैठना है, लेकिन कैसे होना तो हमको बताया नहीं, लेकिन बाबा ने सब मुरली में बताया हुआ। तो मुरली के ऊपर भी हमारा थोड़ा स्पष्टीकरण होना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोड़ तो नशे चढ़े, उसके ऊपर हमारा थोड़ा चिंतन चले, कैसे अगर हम आधा घंटा योग में बैठे तो आधे घंटे हमको केवल वही करना है। अगर हमने वो नहीं किया आधे घंटे में, जो हमने अपने को टाइम टेबल के अनुसार हमने अपनी दिनचर्या बनाई है, अगर वो दिनचर्या को हमने उसने शामिल नहीं किया, तो जो सारे दिन की जो व्यर्थ की दिनचर्या है वो सारी आगे सामने खड़ी हो जाएगी, और वही संकल्प घूमते रहेंगे। आधा घंटा भी अगर हम योग में बैठे हैं तो पहले 5 मिनट में क्या करना है, अगले 5 मिनट में क्या करना है, 10 मिनट में, जब तक वो 10 काम पूरे नहीं होते आधा घंटा वहां से उठना ही है। मन बुद्धि तो जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर हम उस काम को करने बैठे तो हमारा बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। अभी हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, कोई बीच में आएगा तो नजर तो जाएगी ना, लेकिन उसको कह सकते हैं कि बाद में, अगर मैं ये छोड़ के वो उसी के काम को कर दूं तो ये वाला काम तो छूट जाएगा ना। तो इसी तरह योग में हमें विघ्न तो आएंगे, मन से कई जो संसार हमने बिछा के रखे हुए हैं राज नहीं, उसका ट्रीटमेंट हम उस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सामने वाले ने, ये योग की बात चल रही है, कर्म क्षेत्र नहीं, कर्म क्षेत्र भी हमें ट्रीटमेंट कैसे करना वो भी देखा जा सकता है। सामने वाला पात्र कैसा है, उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो बात चल रही थी आधा घंटा अगर हम योग करते तो आधे घंटे में हमको सच में जो दिनचर्या बनाकर करनी चाहिए कि आधे घंटे में हमको ये 6 काम करनी है 5-5 मिनट में, या ये 10 काम करनी है, तो हमारा मन बुद्धि उसमें एकाग्र होगा और एक अंदर में एक संतुष्टता का भाव पैदा होगा कि सचमुच बाबा ने हमें मदद की है इस कार्य को करने के लिए। उसके वरदान का अनुभव होगा, उसके प्यार का अनुभव होगा, और अब हमारा पुरुषार्थ एक सही तरीके से चल रहा है, तो एक थोड़ी सी संतुष्टता होगी। तो इस जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने अपने स्तर पर चिंतन करके देख सकते हैं कि हमारा जो सेवा केंद्र है जहां हम बैठे, जो बाबा ने इतने इतने बड़े तीर्थ स्थान बना के रखे हैं, प्रयोगशाला बना के रखी है, या अभी आश्रम बनने वाले हैं, तो उन सेवा केंद्र को कैसे योग भवन बनाया जाए, वो हमें स्वयं के ऊपर चिंतन करके खुद ही इतना सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि बाबा ने कहा घर घर सेवा केंद्र बनेगा। तो हमारा जीवन एक सेवा केंद्र ऐसा है जिस सेवा केंद्र से अनेकों की पालना भगवान की श्रीमत के अनुसार हो सके। ओम शांति।